सेवा से पीछे ना कर सके। अब ये सब मोहनों ने दशरथ करके, क्योंकि स्वामी ने कहा था सारे दशरथ 12 के 12 जने दशरथ करके भेजना, 12 के 12 दशरथ करके चिट्ठी लिख करके और स्वामी जी को भेज दी। तब स्वामी जी अब वहां छोड़ करके कामा पहाड़ी को राजस्थान की तरफ सबसे पहले अजमेर जाएंगे। उस समय जयपुर शहर बसा हुआ नहीं था, आमेर का ही किला था जयपुर शहर। जय सिंह एक राजा था, उसने बसाया था, वो बाद में आया स्वामी जी के, और जयपुर शहर बाद में बसा, पहले आमेर था जो कि जयपुर शहर से 4 किलोमीटर, अभी दिल्ली की तरफ से जाए तो पहले आमेर का किला ही आता है, वहां जाएंगे और वहां से आगे उदयपुर इत्यादि निकलेंगे। ये चर्चा अब रात को। मोमनों की चिट्ठी आ गई और स्वामी जी कामा पहाड़ी छोड़ करके बड़े बड़े राजाओं को ललकारा, जो वाणी के अंदर उठो रे राणा, राणा राजा राय तनो, कोई धर्म जाता रे देखियो, कोई अपनी ओ हिंदुओं खड़ग संभालो, तुम्हारे धर्म का नाश हो रहा है, ललकारा। बड़े बड़े राजा तैयार हो गए औरंगाबाद के, उनका भी ईमान गिर गया। कैसे वो बातें हुई वो अच्छा रात को सुनना। रात को झोली के टुकड़े भीख मांगने का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जिस सुंदर साथ के दिल में भाव हो कि राजी को आज हमारा थाल भोग लगे, वो रात को ला सकते। बता देना, हमारा फर्जा जरूरी नहीं है कि भाई ये को जरूरी होता है, पर रात को उदयपुर और मंदसौर की बैठक दोनों हो जाएगी। मंदसौर के अंदर स्वामी जी पर ऐसे जो है दिखाते हैं और फिर बातें सुनना रात को, मोमनों को भेजते हैं जब भीख मांग के आओ। अब बताओ वो लालदास जिनके दर से लाखों पति सेठ रोज हजारों भीख भिखारियों को भिक्षा दी जाती होगी, जब स्वामी जी के हुक्म से जाकर के भीख मांगते होंगे तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। ये है वाणी से 72,000 नारियों को काटना दुश्मनों को, कि ना लोक देखी, ना मर्यादा देखी, ना खान। फिर स्वामी जी उनको बैठ के बताएंगे कि मैंने तुम्हें क्यों भीख मंगवाई, मैंने तुम्हें क्यों भिखारी बनवाया, किस लिए बनवाया, तुम्हें में कमियां थी, अभी उन कमियों को निकालने के लिए मैंने तुम्हें इस मंदिर तक पहुंचाया है। वो चर्चा रात को सुनिएगा।
श्री
महामद गए मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फर्दा रोज क्यामत, फर्दा रोज कोई भोग रखना तो नहीं रखो, जल्दी करो, रोज क्यामत पहाड़ी से हुए। सच्चिदानंद स्वरूप बदनिश जब राम है कि हमारे से जो आज्ञा मांगी है, हम अब स्वामी जी कामा पहाड़ी से छो करके बस अब चिट्ठी जो भेजी, सुनने का प्रसंग अभी से शुरू हो रहा है। लालदास जी ने और शेख फजल ने चिट्ठी तो भेज दी, ये नहीं सोचा भी अब स्वामी जी जाएंगे तो खाएंगे कहां से। चिट्ठी पहुंची और चिट्ठी पहुंचते साथ स्वामी जी कामा पहाड़ी से होकर के सीधा आमेर आया, आमेर के किले में पहुंचे। और आज भी जिन सुंदर साथ ने आमेर का किला देखा है, उस राजा की विवाह जो हुआ था पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, तो देवी की पूजन के हिसाब से ही उसको वो स्टेट मिली थी। आज भी उसने वो स्टेट आमेर का किला जो गवर्नमेंट को सौंपा है, तो एक ही शर्त पर सौंपा है कि जब तक ये किला रहेगा रोज का एक बकरा और एक शराब की बोतल उसमें चढ़ेगी, और आज भी चढ़ रही है। मैं मानता तो नहीं था, लेकिन इस बार कुछ सुंदर साथ साथ चले गए और देखा कि हकीकत है। वहाँ प्रसाद जो दिया जाता है मीट का और शराब का ही दिया जाता है, और किसी चीज का भोग लगता ही नहीं आज भी। इस वास्ते अब जो राजा ऐसा राक्षसी बुद्धि वाला था, उसके साथ सत्संग चर्चा क्या हो सकती थी। 2-3 दिन ही स्वामी जी वहां से ठहरे और फिर वहां से आगे प्रस्थान किया, चल पड़े। अब जब दिल्ली से निकले तो ये बात मुकंददास जी को उदयपुर में पता चल गई, क्योंकि मुकंददास जी स्वामी जी को छोड़ करके चले गए थे, वो लड़ाई के वक्त में साथ नहीं दिया, चले गए। और वहां जाके उदयपुर में रामायण भागवत के पाठ कर कर करके, जैसे 15 लोग पाठ करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, 400 रुपया जरूर उन्होंने पाठों में एक साल में इकट्ठा कर लिया था, जितनी देर मोमिन गए। अब वो स्वामी जी से मिलने के लिए कि अभी स्वामी जी आ गए हैं, चल के हाल चाल का पता लें, देखें तो सही स्वामी जी की क्या हिम्मत है। अब स्वामी जी वहाँ से चल के सांगानेर जाते हैं, और तो भी मुलाकात नहीं हुई, अभी वो उधर से उदयपुर से चल चुके हैं, अब वहाँ भी कोई सत्संग चर्चा का प्रसंग नहीं बना। अब वहाँ से चल करके जब आगे बढ़े, 28 दिन हो गए सुंदर साहब जी, खाना नहीं मिला। क्यों? पैसा कोई पास था नहीं, और स्वामी जी ने आज दिन तक किसी के सामने हाथ जाके भीख नहीं मांगी। दो सुंदर साहब साथ थे, उत्तम जनी और निर्मलदास जी। अब इंसान ही तो है, शरीर यहाँ का है, 28 दिन एक रोज तो मजल करनी और एक फिर खाने को कुछ है नहीं। इस वास्ते शुदा इतनी भूख थी कि उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, एक दुकान पर बैठे हुए थे। अब उधर से मुकंदास जी सीधे सांगानेर से होते हुए आमेर पहुंचे, पता लगा आमेर में पूछा था सब, पता कहने लगे जी आए तो थे, साथ महात्मा इधर चले गए। अब उनका पता करते करते अब इतने में पीछे से लाल दासी को चौंक आई कि ओह हो शेख बदल, बहुत पाप कर बैठे हैं हम लोग, स्वामी जी को ये तो चिट्ठी लिख दी है कि चले जाओ, क्या व्यवस्था की है हमने उनके खाने पीने की। अब घर वहां शेख बदल का था और तो किसी सुंदर साथ का था नहीं, हिंदू लोग तो जा नहीं सकते थे। शेख बदल फटाफट घर भागा, 300 रुपए ही घर से नहीं मिल सके, 300 उस समय के लिए बहुत ज्यादा थे, 300 रुपए लेकर के पीछे भागा तो सही, लेकिन 2-3 दिन का जो गैप पड़ गया था वो पूरा करते 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 अब जा करके मुलाकात होगी। 28 दिन स्वामी जी ने और उन सुंदर साथ जो दो साथी साथ थे कुछ नहीं खा सकते, मिला ही नहीं कहीं से कोई साधन ही। हाँ मिलेंगे इकट्ठे। अब जब ये आमेर से चले हैं तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। अब मुलाकात होगी तो दोनों चले, तो रास्ते में एक पूरा गांव था, वहां पर एक दुकान के सामने स्वामी जी को बैठा हुआ देखकर पहचान लिया, शेख बदलने के स्वामी जी बैठे। तो मुकंदास जी बहुत उतावले चल के आगे गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, जब हालत देखी तो भाई ये तो बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। तो उनकी कमर में कसमी वो आगे नेफनी सी बनाया करते थे जिसके अंदर नकद रुपया डाला करते थे, कमर में वासनी में 400 रुपये डाल रखे थे, तो उसमें से कुछ भी निकाल करके बाजार से राशन पानी लाया। स्वामी जी साफ लिखते हैं कि उस दिन मुकंदास जी के उस एक जो भी पैसे निकाल करके पैसा लगा या अठाने लगे या रुपया लगा जो भी खर्च हुआ वो राशन पानी बाजार से लाया, उस दिन का भोजन हुआ। अब इतने में शेख बदल जी आ पहुंचे और शेख बदल जी ने आकर के 300 के 300 रुपए रोते हुए चरणों में रखे कि स्वामी जी हमसे बड़ी भूल हो गई, पत्री तो हमने लिख दी लेकिन आपने थोड़ा तो इंतजार करना था, क्षमा कीजिएगा, हमें पता है कि आपने 28 दिन भोजन नहीं किया, आप हो क्या सकता है, अब ये 300 रुपया लीजिए और आप यहाँ से उदयपुर चलिए। वहां चल के जो सुंदर साथ लड़ाई के समय में माताएं बहने बाईजुराज तेजकुरी जो थी उनको आगरे में स्वामी जी ने भेज रखा था कि तुम वहां ठहरना, इकट्ठे रहो वहां, और जब हम निकलेंगे यहाँ से तो आपको बुला लेंगे। तो शेख बदल कहता है कि आप सब सुंदर साथ को बुला करके इकट्ठे उदयपुर किए, इतनी देर में मैं और पैसे घर से लेकर के आ जाऊंगा। अब जब भोजन कर चुके तो मुकंदास और स्वामी जी की बातें क्या हुई, जिन्होंने स्वामी जी को आज उस समय साथ थे और मुकंदास जी ने घर बार छोड़ा सब कुछ त्यागा, फिर भी आखिर जब संकट का समय आया तो स्वामी जी को क्या समझा, एक इंसान। इसलिए स्वामी जी की अब परीक्षा लेने लगे रात को बैठ करके, मुकंदास जी क्या प्रश्न करते हैं जरा चुपियों से भी सुनिए, ध्यान के साथ सुनिए जरा, श्री जी साहब जी के दिल की बातें देखें भाई, इनमें कितना की हिम्मत है। बड़ी टांटे कसी स्वामी जी को, स्वामी जी हमने आपको कहा था ना कि ना लो मुसलमानों के साथ झगड़ा, क्या जरूरत समय मुसलमानों के साथ बातचीत करने की, नहीं आते तो ना आवे, अपने आप जब समय आ जाएगा जागनी हो जाएगी, पर आपने हमारी मानी नहीं, अब क्या मिला आपको, सारे सुंदर साथ छोड़ के आपको चले गए, 12 मोमनों को आपने वहां जेल में फंसवा दिया, 28 दिन से आप भूखे प्यासे रह रहे हो, ये उल्टा टांट कस रहा है, एक भाव खत्म हो गया कि ये राजी महाराज अक्षातीत हैं, और देखें कि अब इनके दिल की हिम्मत क्या है। इस तरह से स्वामी जी को कहा कि क्या लिया आपने ऐसे काम करके, तब बातें पूछने लगे। देखे वाला मुकामदास जी कैसे देखें तो सही वाला, स्वामी जी में अब कितनी हिम्मत है, क्या सलाह करते हैं, क्योंकि जब इंसान समझेंगे तो फिर क्या होगा। मुकामदास जी ने अब एक आदमी से जैसे व्यवहार किया जाता है उस तरह से स्वामी जी से बातें करनी शुरू की। ये कहा मुकामदास जी ने, क्या मिला आपको, आपको हमने मना किया था ना, हम आराम से रहे उदयपुर में, हमें क्या हुआ, और आपने उन बेचारे 12 मोहनों की खलेड़ी उतरवा दी, इतना संकट पड़ा, क्या फायदा ऐसी जागरी करने का। आप ध्यान के साथ स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी ने कहा मुकामदास, हमने तो भी सब कुछ बिगाड़ा और मोमनों को मार भी डलवाई, उसकी तो चिंता न कर, पहले ये बता तू तो पंडित था, वेदों के शास्त्रों के पुराणों के ज्ञानों को सब जानने वाला था ना, और साल भर से उदयपुर में रहा, कितने सुंदर साथ को तात्म दिया ये बता। कहता जी तात्म तो मैं एक को भी नहीं दे सका। कहने लगे तो बस पैसे बटोरने के चक्कर में तुझे कोई तात्म दिया कि गीता भागवत की कथा सुनो और पैसे इकट्ठे करो, यही किया है ना, और मेरी ताकत अब देखना चाहता है तो ये मुसलमान इस निर्माण में अब भारत पर कभी राज ना कर पाएंगे, और इनको जड़ बुनियाद से उखाड़े बिना छोड़ूंगा नहीं। नंबर 3, आपने क्या समझा है कि हम इनको छोड़ देंगे, अब तो मेरी अब ताकत ही देखना चाहता है, तो कोई हमारे पास हथियार तो नहीं, जिस उदयपुर में तू रहा है और लादो मोसानी और बड़े बड़े वहां ज्ञानी थे, तेरी बात किसी ने मानी नहीं, तातुम नहीं ना लिया, अब तो मेरी ताकत देखना चाहता है, जा अब मेरे हुक्म से जा, बस यही मेरी ताकत है कि मैंने अपना हुक्म शब्द इस्तेमाल किया है, अब तू मेरे हुक्म से उदयपुर जा, 2 दिन चर्चा सुनाना, वही लादो मोसानी जिसके पीछे तू घर में रहा है और 1 साल तक उसको तूने चर्चा सुनाई, तातुम नहीं लिया, अगर 3रे दिन ही वो दर्शनों के लिए ना कह दे तो समझ लेना स्वामी जी के अंदर कोई ताकत नहीं है। अब यहां से शेख बदल तो वापस चला गया, दिल्ली रुपया दिया और वापस चला गया, उसका तो इतना ही काम था चिट्ठी पत्री लाने का। अब मुकामदास जी यहां से उदयपुर जाते हैं और लादो मोसानी से जा करके 2-3 दिन ही बस चर्चा सत्संग क्षर क्षर क्षातीत के भेद जब खोल करके बताए और स्वामी जी का आना बताया, उसी वक्त लादो मोसानी तैयार हो गया कि जाओ तो स्वामी जी को बुला के लेके आओ, मैं उनके स्वागत की तैयारी करता। मुकामदास जी के हवास उड़ गए, ये है शिव जी की ताकत, उनकी वाणी ही ताकत है, और स्वामी जी दुनिया में कोई चमत्कार करने नहीं आए, कोई वो रिद्धि सिद्धि वाले बाबा नहीं थे, कोई जादू टोने करने वाले वो फकीर नहीं थे, बस जुबान से और वचन किसके हैं, अंदर कौन बैठा है, अक्षरातीत बैठे। उन्होंने जब कह दिया जाओ मेरे हुक्म से तुम काम करो, बस उसी वक्त लादो मोसानी तैयारी करता है, मुकामदास आ गया स्वामी जी के चरणों में गिरा आके, कहने हम नहीं, माया की बुद्धि थी, हम भूल गए, आप क्षमा कीजिए, लादो मोसानी जिसके ऊपर मैं साल भर परिश्रम करता रहा, चर्चा सुनने को तैयार नहीं हुआ था, आपकी राह देख रहा, स्वागत के अंदर है, कृपा करके चलिए। ले करके मुकामदास जी उदयपुर वहां पहुंचते हैं, वहां जाकर के स्वामी जी ने अब सुंदर साथ जो आगरे में बाईजुराज को और सुंदर साथ को बूढ़े को औरों को छोड़ रखा था उन सबको भी बुला लिया और अब वहां बैठ करके जो है चर्चा सुनाई। अब चर्चा जहां होती है खूब धूमधाम के साथ वेदों से शास्त्रों से पुराणों से और कुरान के प्रमाण भी देते हैं साथ, क्योंकि अब कुरान को साथ जब ले ही लिया मेरते से तो अब जहां जहां चर्चा होती है कुरान के सिर्फ प्रमाण में गवाही देने के लिए, यह मतलब नहीं है, आप देखते हो किसी भी मंदिर में हमारे को कुरान पढ़ा के आरती तो नहीं सिंहासन पे की जाती, जैसे भागवत है वैसे कुरान है, या कुरान या प्राण, बराबर का आदर है दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों के अंदर हमारे परमधाम की ग्वाहियां अखंड ब्रजराज की ग्वाहियां हैं, आदर सब ग्रंथों का है निरादर नहीं, लेकिन पूजन के लिए सिर्फ अक्षरातीत की वाणी है, क्योंकि ये सत्यवाणी मत के वो सत्यवाणी है और दुनिया के ग्रंथ जो है असत्य दुनिया के और अपराशक्ति के, और वो वाणी जो है वो जागृत बुद्धि अक्षातीत की श्री राज्य में रहती है। इस वास्ते स्वामी जी जरा जरा समझा करके तात्म के भेदों से आवेश से जब चर्चा करते हैं तो किनकी खातिर उदयपुर गए थे? अगर कोई आत्मा थी, कई एक सैकड़ों सुंदर शासनी जो उनके नाम लिखे हैं, फूला भाई, मोटी भाई, छोटी भाई, बड़ा भाई, ये भाई, वो सारे उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, सबने आकर के तात्म लिए। अब उसी हवेली के साथ दो राजपूत भी थे, और आप जानते हो राजपूतों के आज भी अक्कड़ है, वो घर बैठे चर्चा सुनते हैं रोज लेकिन आते नहीं। तो अब एक दिन विषय प्रसंग आ गया तो हर कोई ले तो अपने ऊपर लेता है कि भाई ये चर्चा जो पारद नक्शा थी की है, ये निमंत्रण कैसे का लो भाई चर्चा हो रही, सानू को सुनिया देता, सानू किसी को आख्या से चर्चा सुन जाइए। अरे भाई ये कोई संसार का व्यवहार थोड़ा है, किसी के घर हाँ अपना कोई निजी लड़के की ब्याह शादी हो, निमंत्रण ना दे तो ना जाना वो तो एक अलग बात है, और राज्य की चर्चा इसके लिए काय का निमंत्रण है, नहीं भी मिला तो राज्य की मानी सुनने जाना है भाई। इतने कोई विषय आ गया होगा जिस पर स्वामी जी ने चढ़ाया, और राजपूत उठ के तुरंत आके चरणों पर गिर पड़े, आके उन्होंने भी तात्म लिया। अब होता क्या है कि इधर स्वामी जी एक दिन वैसे ही ताल पर जा रहे थे, जाते थे क्योंकि नहाने का धोने का सब कार्य काम वहां पर उदयपुर के अंदर बड़ा ताल, तालों में ताल, उदयपुर का ताल आज भी तालाब है, कभी कह पड़ा होगा किसी राजा ने बनाया होगा उससे बड़ा ताल जो है शायद भारत में कहीं नहीं है, इतना बड़ा तालाब उदयपुर का आज भी है। वहां बैठे थे तो कुछ मुसलमान लोग ज्ञान के साथ, कुछ मुसलमान लोग बारात में आए थे और स्वामी जी की चर्चा सुनकर, उनमें एक अव्वल खां पठान था, अब इसका नाम जरा याद रखना, औरंगाबाद की बीतक में इसका नाम आएगा, किसका? अव्वल खां का। अब अव्वल खां ने जब मुसलमानों को देखते थे स्वामी जी तो कुरान से चर्चा शुरू कर देते थे, कुरान के भेद खोलकर, इमाम मेहंदी के आने की बातें खोलकर, जब सात निशान क्यामत के जाहिर किए तो वो 10-12 मुसलमान चर्चा सुन के चल तो पड़े। अब उनके अंदर एक नूर मोहम्मद जो काजी था, उससे अव्वल खां ने सवाल किया कि अब नूर मोहम्मद सच सच बता, ये बातें वो नहीं है जो मोहम्मद साहब ने ये लिखा था कि इसके मायने अल्लाह ताला के बिना कोई खोल नहीं सकता, पर वैरागी है, हिंदू है, टीका लगाते हैं, माला पहनते, यही तो बात है, और तो कोई नुकसान नहीं, बाकी बातें वही हैं जो खुद कहा था मोहम्मद साहब ने कि इन बातों के मैंने अल्लाह ताला के बिना सात निशान के क्यामत के जाहिर कोई कर नहीं सकता, अल्लाह ताला की सूरत कोई बयान नहीं कर सकता, तो सच्ची सच्ची कसम खा के खुदा की बता तेरा विचार क्या है। तब वो काजी जो था नूर मोहम्मद उनके साथ, उन्होंने कहा भाई देखो कुरान के हिसाब से तो बिल्कुल इमाम मेहंदी, बाकी है शरीयत की बात, उस हिसाब से तुम मानना चाहो तो मानो, हम नहीं मान, हम शरीयत को नहीं छोड़ सकते। अव्वल खां ने उसी वक्त ही घोड़ा वापस लिया, कहने लगा अच्छा तुम जाओ मैं नहीं जाऊँ, ईमान वजूद का है कि या ईमान हमारा अल्लाह पर है, एक एक चीज को सुनिए। अव्वल खां कहता है कि हमारा खुदा वजूद नहीं है किसी का, हमारा खुदा अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला तो सबका है, चाहे वो मुसलमानों के तन में आए और चाहे वो हिंदुओं के तन में आए, तो अल्लाह की अपनी मर्जी है, ये को अल्लाह हमारा गुलाम है कि हम कहीं भी मुसलमानों के ही तन में आओ, ये उनकी अपनी मर्जी है, मैं तो उनसे जाकर के जरूर पूछूंगा कि आप कौन है। घोड़े को लौटाया, आ गए, आकर के आते ही सवाल किया कि हजूर आप अपनी पहचान कराइए आप कौन। उस समय मुकंदास जी महाराज तारतम पट की चर्चा जो है बैठे सुनवा रहे थे, जब तारतम की चर्चा हो रही थी देख करके जो है स्वामी जी ने उनको जो है अरबी भाषा के अंदर वर्णन करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद साहब ने कहा था जो हौज कौसर और अर्शे अजीम के नौ भूम दसवीं आकाशी, ये सारा वर्णन करना शुरू कर दिया। तो उसने जब प्रश्न किया तो स्वामी जी ने कहा कि भाई इतनी बातें सुनने के बाद, सात निशान क्यामत के सुनने के बाद, छह दिन की हकीकत जब स्वामी जी ने वर्णन की, उन्होंने कहा कभी कुरान तुमने पढ़ा या सुना है? कुरान में मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है कि इन बातों के मैंने अल्लाह ताला के बिना कोई खोल नहीं जम सकता, तो फिर मेरे और मोहम्मद के बीच में तीसरा है कौन जो आकर के इन बातों को मायने में खोल देगा। इतनी बात सुनी यानी पहचान होगी कि ये इमाम है नहीं, जो खुद कह रहे हैं कि मोहम्मद और मेरे बीच में तीसरा कोई है नहीं, कि मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही इमाम मेहंदी हूँ। हाथ के अंदर वो घोड़े को चलाने वाला चाबक था, उसी चाबक को लेकर के धड़ा धड़ अपने को मारने लगा, पीटने लगा। आत्म की ये पहचान होती, मुसलमान ही सब था और औरंगजेब का दरबार का मुसलमान था। उसी वक्त स्वामी जी ने सुंदर साथ को उठाया, अरे भाई पकड़ो इसे, उतार के भाग्यमान को ले आओ, पागल हो रहा। उतारा घोड़े से, पास बिठाया और क्या कहा, तुम हो हमारे वतनी, कि तुम उस अर्श हसीम के हो, तन तुम्हें जरूर मुसलमानों का मिला है, लेकिन कुरान ये तो नहीं कहता कि सुन करके अपने शरीर को मारो। कहने लगे नहीं हजूर, मैं इसलिए नहीं मार रहा, मैं अपनी अंधी आंखों को फटकार रहा हूं कि अगर ये मेरी आंखें मामे चाचे ताए को देखती तो क्या फौरन ना पहचान जाती, और आज मेरी आंखों ने अल्लाह ताला को पहचाना क्यों नहीं, मेरे कानों ने आपकी आवाज को सुन करके जाना क्यों नहीं, इसलिए मैं अपने को सजा दे रहा था। बस वहां तातम लिया बैठ कर, अव्वल खाने उदयपुर के ताल पर तातम लिया और फिर वापस आता है। अब उधर से क्या होता है, मोमिन चिट्ठी लिखती, चिट्ठी पाती बराबर आती जाती रहती है, दोनों जने एक शेख बदल और एक कांजी भाई, एक वहां से चलता है एक यहां से चलता है, हालात बराबर देते आते हैं। अब मोमिन लिखते हैं कि स्वामी जी 8 महीने हो गए, आगे तो कभी ना कभी शेख इस्लाम हमें बुला करके कुरान की बातें सुन लेता था, अब वो भी कभी हमारे से बात नहीं करता, और औरंगजेब ने भी कई बार हमको देखा लेकिन उसने कभी हमें बुलाया नहीं, हमारे से कोई बात करता नहीं, और मुसलमान जितने भी हैं वो हमारे ऊपर उंगली उठा के कहते इतना जरूर है कि ये इमाम मेहंदी के आदमी हैं, लेकिन कोई काजी अब हमारे से बात करता नहीं, हम यहाँ बेकार बैठे। लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं है, आप ये मत समझना कि हमको यहाँ पर भाई बैठे हैं तो कोई हमें डर लग रहा है या कोई खौफ है, हम बैठे हैं जब तक आपका हुक्म है हम बैठे हैं, पर अब किसी काम हम कर ही नहीं रहे हैं, या तो ये लोग हमारे से कुरान की चर्चा सुनते या बादशाह हमें बुलाता, बादशाह से कुछ बातें होती फिर तो हमारा यहाँ बैठा रहना भी कुछ चलो भी सफल होता। अब बेकार अगर आप कहते हो कि अभी बैठना है तो हमें आने की जल्दी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि हमें कोई यहाँ घबराहट है, इस वास्ते जैसा अब आपका हुक्म हो सो हम करें। ये चिट्ठी लेकर क्या है, स्वामी जी ने अपनी चिट्ठी हाथ से लिख ली कि आ जाओ अब छोड़ दो, इन जहलों पर खुदा का सोटा बरसे। ये लिखा है कि जाहिल लोग जो होते हैं वो वाणी से नहीं समझ सकते, वाणी तो उनके लिए होती है जो बुद्धिमान लोग हैं, और जो सुन करके यकीन ला के मुंह से हां मान करके कह दिया कि इमाम मेहंदी आ गए आ गए आ गए, और फिर जहालत नहीं के वास्ते कुर्सी और पैसे के, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमने एक दुनिया के पीछे खुदा ताला को छोड़ रहे हैं वास्ते मान मर्यादा के, और हम उस खुदा से बिछड़ रहे हैं, तो ऐसों पर वाणी असर नहीं करेगी अगर तुम बैठे भी रहेगे तो। इन जाहिलों पर क्या बरसेगा, खुदा का सोटा जब बरसेगा, खुदा की मुसीबत पड़ेगी तब जाके इनकी अकल सीधी होती है, जाहिल लोग वाणी से नहीं सीधे हुआ करते, और खुदा अपने आप सीधा कर लेता है, उसके बड़े हाथ हैं, वो मिनटों में ऐसी मुसीबत डाल देता है कि आदमी तोबा तोबा त्राहि त्राहि करके उसके चरणों में आ जाता है। इस वास्ते जो है तुम आना, लेकिन शेख इस्लाम से इजाजत लेके छुट्टी लेकर के आना के भाई अब हमारा कोई यहाँ काम नहीं है, हम जाना चाहते हैं, हमें छुट्टी दो, हम अपने इमाम मेहंदी के पास जाएं, जब ना तुम कुरान से कोई बात करते हो ना हमें बुलाते हो तो हम बेकार यहाँ किस लिए बैठे रहे। अब चिट्ठी लेकर के जब वो आ गए शेख बदल या कांजी भाई दोनों में से, तब लाल दाची गए और शेख इस्लाम से बात की कि देखो काजी साहब इतने दिन से अब हम बेकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कभी आपने भी हमें नहीं बुलाया, जब तक तो रोज आप कुरान से हमारे से चर्चा करते रहते थे, चलो हमारा भी दिल लगा हुआ था, अब हम खाली बैठे बैठे क्या करें, इसलिए आप कृपा करके आप हमें इजाजत दीजिए, हम अपने हाजी के पास जाना चाहते हैं। तब शेख इस्लाम ने कहा कि देखो भाई ये खुदा ताला का मुकदमा है, और वक्त हशर के मेरे अकेले के ऊपर लानत पड़े ये गुनाह तो फिर मेरे ऊपर ही होगा ना, मैं आज बादशाह से जाके बात करूंगा और परसों आइयो तुम, कल हम सारे दरबार के अंदर आम को और खास को यानी खास का मतलब जो वजीर वजराज सारे पार्लियामेंट के सदस्य या लोग हैं उनको भी सूचना दे देंगे और आम पब्लिक में भी ढिंडोरा पिटवा देंगे कि इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी दरबार से जाना चाहते हैं, राजा का दरबार लगेगा बादशाह का, मैं तुम्हें बादशाह के सामने ले चलूंगा और भरी पब्लिक के अंदर ये ऐलान कर दूंगा कि भाई मुसलमानों कल को मेरे ऊपर दोष ना देना, ये लश्कर इमाम मेहदी के आदमी आए थे जिन्होंने औरंगजेब से भी बातें की और मेरे साथ पूरी रिपोर्ट मैंने बादशाह को दे दी है, अब ये रजा लेकर के यहाँ से जा रहे हैं ताकि मेरे अकेले के ऊपर तो कलंक वक्त हशर का दिन तो आना, हर एक को पता है कि वक्त आखिर का होगा तो गुनाह मेरे ऊपर ना लगे, इसलिए लालदास तुम परसों बस उसी दिन उसी हिसाब से उसने सारा प्रबंध करवा दिया। पब्लिक आम भी आ गई, खास भी आ गए, वजीर वजरा भी आ गए, मोमनों को ले जाकर के औरंगजेब के सामने खड़ा किया। अब सुनिए क्या होता है। बस तब काजी ने इशारा किया कि ए हजूर बादशाह सलामत, ये है वो इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी जिन्होंने आपसे बातें की थी और जिनको देखने के लिए आपने मेरे जिम्मा लगाया था, मैंने पूरी रिपोर्ट इनकी आपके पास भेज दी है, अब ये इजाजत लेकर के जाना चाहते और किसी काम के लिए दरबार नहीं लगाया। तब औरंगजेब बादशाह मारे शर्म के मोमनों की तरफ आंख तो उठा के देख नहीं सकता, शर्मिंदा है और हाथ उठा के अल्लाह ताला से जैसे अपना राज्य मराय करो मेल मांगते हैं, धनी मेल करो कृपा करो, तो वो लोग खैर मांगते हैं, शब्द खैर है, मेल की जगह खैर, कि ए अल्लाह ताला, ए मेरे परवरदिगार, रहम कर रहम कर रहम कर और इन मोमनों पर खैर करना और ये अपनी मंजिल में जाए। तब तो एक खजांची हुक्म दिया कि मोमनों को 100 रुपया, उस वक्त का 100 रुपया तो बहुत आज के हिसाब से बड़ा काफी था, कि रस्ते के खर्चे के लिए इनको दे। लालदासी कहते हैं बादशाह सलामत, हमें किसी प्रकार की भीख की जरूरत नहीं। तब औरंगजेब कहते हैं भाई ऐसे क्यों बोलते, आपने तो नहीं मेरे से मांगा कोई, मैं आपके चरणों में एक भेंट पेश करता हूं, तो नजराना पेश करता हूं इस वास्ते कि दरबार से खाली तो मत जाओ। तब लालदासी ने सोचा काहे का झंझट डालना है, ले एक सुंदर सासे का उठा ले वही 100 रुपया, उठा लिया, आगे इजाजत लेकर के बाकायदा भाग करके नहीं आए, इजाजत लेकर के आए और ये सीन वक्त आखरत को आप सुंदर साथ अपनी आंखों से देखोगे, ये भी याद रख लेना कि हमें बताया गया था, आतंकवाद हमारी भले परमधाम से देखेगी लेकिन जीव हमारी जब इनको भेजते मिलेगी, औरंगजेब के जीव को ये सारी लानत उस समय लगेगी कि तेरे दरबार में आए थे और तूने वास्ते कुर्सी के अल्लाह ताला को ठुकराया था, ये सीन सारे पेश होंगे। अब उसके बाद मोमिन जब बाहर आए तो 5 सुंदर साथ दिल्ली के थे, 7 बार के थे, अब 7 ने तो किसी को मिलना नहीं था, 5 सुंदर साथ ने कहा लालदाजी एक दिन रुक जाओ, घर वालों को आखिरी प्रणाम तो कर रहे हैं कि लो भाई जिंदा शक्ल हमारी देख लो, हम तो उनके पास को रहने के लिए छोड़ा जाएंगे। लालदास ने कहा भाई तुम जाओ, अगर घर वाले तुम्हें प्यारे लगते हैं हम तो पहले जा रहे हैं उदयपुर, श्री जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, तुम पीछे आ जाना। बस चल पड़े और जो वो 5वीं थे घर थोड़ा ठीक है, बस उसी दिन प्रणाम किया, वो भी पीछे दूसरे दिन चल पड़े, बस जाकर के स्वामी जी के चरणों में उदयपुर जाके प्रणाम किया। जब स्वामी जी को पता चला कि मेरे शूरवीर योद्धा आए, उठ करके गले से लगाया, एक आंसू दुख के होते हैं और एक आंसू खुशी के होते हैं, ऐसे सुंदर साथ ने जो कुर्बानी करके दिखाई, स्वामी जी उठ करके गले लगा लगा करके नहीं टिक सके, आंसू आंखों से आंसू टपक जाते और फिर तो इतना दोष स्वामी जी को आ गया मोमनों के आने पर कि चर्चा की कि सीमा की हद नहीं रहती। अब उस चर्चा से सुन सुन करके ये बातें औरंगजेब के और उसके जो है वहां का जो राजा था उसके दरबार में भी जाने लगी, कोई निंदा करता है कोई स्तुति करता है पर बातें दरबार में जाने लगी। अब इधर क्या हुआ, साकेत होकर के सुनने का प्रसंग है, मुकंदास जी महाराज ने अपना काम चालू कर दिए क्योंकि वो जो मोमिन आए थे पंक्ति लगे सब मिलकर के ही भोजन खाते थे, स्वामी जी ने उसी समय आते ही प्रणाम करने के बाद कह दिया बस लाला ये जो भेष है इसे अब उतार दो और धोती कुर्ता अपना पहन लो जो आपने सुंदर साथ की पोशाक है, उसी समय उनके वस्त्र बदलवा दिए अब उसमें साथ ही हैं, कोई भंगी तो नहीं हो गए, कुछ अमार तो नहीं हो गए, मुसलमानों के हाँ रहे हैं तो हो क्या गया। वाणी तो राज्य की पढ़ते थे, सबको स्वामी जी के नाम के मोर्चे पर गए हुए थे, लेकिन मुकंद दास जी ने सबके अंदर क्या भड़काना शुरू कर दिया पंडित के रूप में। अरे जहाँ ये लोग ना बैठा करें ना खाना खाने के लिए, इनके साथ ना बैठा करो, ये मुसलमान हैं, 10 महीने तक इन्होंने मुसलमानों की रोटियां खाई हैं, तुम्हारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए इनके साथ ना बैठा करो। अरे ये बातें घुसड़ करते 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 सब सुंदर सास में फैल गई, और जहाँ ये 10 मोमिन बैठे वहाँ कोई सुंदर सास बैठे नहीं उनके साथ। आखिर स्वामी जी तक भी बात पहुँच गई।